जानवी एक बार मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखती है और फिर वहां से वापस नीचे चली जाती है। वहीं माही त्रिशा को लेकर समर्थ के कमरे में जाती है। समर्थ के कमरे में हल्की डेकोरेशन की गई थी। शायद ज्यादा करने से समर्थ ने मना कर दिया था, लेकिन दीक्षांत ने जिद करके थोड़ी बहुत तो कर ही दी थी। उसे देखकर इस पूरी शादी में पहली बार त्रिशा के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी, वरना वो शादी तो इतने मज़े में कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था उसने समर्थ को हरा दिया। लेकिन अब इस सुहागरात की सजावट को देखकर उसका दिल धक-धक कर रहा था। माही ने उसे बेड पर बैठाया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो त्रिशा ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? माही को अपनी और जानवी के बीच की बातें याद आईं। उसे अब लग रहा था कि त्रिशा ने ही उसका ब्रेन वॉश किया था, जिसकी वजह से वो जानवी के बारे में इतना बुरा बुरा सोच रही थी। उसने मुंह बनाते हुए त्रिशा को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं दी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो बस सोच रही थी कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर त्रिशा ने जल्दी से कहा, नहीं, एक तुम ही तो हो जिससे मैं यहाँ अपने दिल की बातें कर सकती हूँ, तो तुम कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। माही ने कुछ सोचते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर वहाँ से निकलकर वो भी उस कमरे में चली गई जहाँ पहले त्रिशा और माही एक साथ रहते थे, क्योंकि माही का सारा सामान इस कमरे में था। वहीं अमर और दीक्षांत ने सारे मेहमानों को विदा कर दिया था। कल्याण सिंह और रजत भी काफ़ी थक गए थे, इसीलिए वो भी अपने कमरे में आराम करने चले गए। आज उनको कई दिनों बाद सुकून की नींद आने वाली थी, क्योंकि आज उनके दोनों बेटों का घर बस गया था। अब बस बचा था तो सिर्फ दीक्षांत। अमर कुछ देर बाद अपने कमरे में आता है और उसे बेड पर गुमसुम बैठी जानवी दिखाई देती है। अमर को कुछ देर पहले की अपनी और जानवी की बातें याद आती हैं, जिससे उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो धीमे कदमों से जानवी के पास जाता है और फिर वहीं बेड के पास नीचे फर्श पर बैठकर जानवी के झुके हुए चेहरे को देखता है और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, कहाँ खोई हुई हो बच्चा? क्या हुआ? काफ़ी परेशान लग रही हो। अचानक ही अमर को महसूस हुआ, हो सकता है जानवी उसके बिहेवियर की वजह से परेशान हो, तो उसने जल्दी से जानवी के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहा, बच्चा, अगर तुम हमारे बारे में सोच रही हो तो तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ज़्यादा बोल गया, मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए था। मैं फिर से तुम्हारे सामने कोई डिमांड नहीं करूँगा, पर तुम ऐसे उदास मत रहो, तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है। जानवी ने हैरानी से अमर के चेहरे को देखा, जो जानवी को उदास देखकर बहुत ज़्यादा गिल्ट से भर चुका था। जानवी ने अपने हाथों को अमर के हाथ से छुड़ाया और फिर अमर का सख्त चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं तो त्रिशा दी के बारे में सोच रही थी। इतना बोलकर उसने झुकते हुए अमर के माथे को अपने होठों से चूम लिया, जिसके साथ ही अमर के चेहरे पर सुकून बिखरा और वो उठकर जानवी के बगल में बेड पर बैठ गया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बस कुछ दिनों की परेशानी है, उसके बाद त्रिशा और समर्थ का रिश्ता भी सुधर जाएगा। जानवी ने अपना सर उठाते हुए अमर की आंखों में देखकर कहा, त्रिशा दी बुरी नहीं है, मैंने उनके साथ पूरा बचपन बिताया है, मुझे पता है वो कैसी है। अब वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मुझे इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। मुझे पता है आप लोग फिलहाल उन्हें गलत ही समझ रहे होंगे। अमर ने झुकते हुए आहिस्ता से जानवी के नरम गाल को चूमते हुए कहा, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ त्रिशा अच्छी है, मेरे दिल में अब उसके लिए कोई नफरत नहीं है, वो अब मेरे छोटे भाई की पत्नी है और मैं उसकी काफ़ी इज्जत करता हूँ। मानता हूँ एक समय तक मैं उससे बहुत नफरत करता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर जानवी ने एक गहरी सांस भरते हुए अमर की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे अमर के साथ सबसे ज्यादा सेफ महसूस होता था और उसकी सारी परेशानियां जैसे अमर के गले लगने से ही दूर हो जाती थी। अमर ने भी उसके बाल सहलाते हुए कहा, बहुत थक गया है मेरा बच्चा। जानवी ने हल्के से अपना चेहरा अमर की गर्दन पर रब करते हुए धीरे से हूँ कहा और फिर अमर ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम इन कपड़ों में नहीं सो सकती हो बच्चा, चलो हम पहले एक क्विक शावर ले लेते हैं, उसके बाद सो जाना। समर्थ का कमरा। त्रिशा डरी सेमी बेड पर बैठी थी, अभी तक समर्थ नहीं आया था। त्रिशा ने अपने मन ही मन कहा, मैं उसे इस कमरे से ही बाहर निकाल दूंगी, तो फिर कैसे वो मेरे साथ कुछ कर सकता है। त्रिशा ने पूरा मन बना दिया था कि वो समर्थ को कमरे के अंदर आते ही बोल देगी कि वो उसके साथ ये कमरा शेयर नहीं करना चाहती है। और कुछ ही पलों में उसका इंतजार खत्म हुआ जब समर्थ तेज कदमों के साथ कमरे में आया। उसने कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, जिसे देखकर त्रिशा की धड़कनें तेज हो गईं। वो झट से बेड पर से उठी और समर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ ये कमरा शेयर नहीं करना चाहती हूँ समर्थ रावत, तो तुम दूसरे कमरे में जाओ। त्रिशा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर समर्थ से ये बात बोल दी थी, तो वहीं समर्थ ने किसी डेविल की तरह तिरछी स्माइल करते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, ऐसे कैसे जाऊं? तुमने मुझसे शादी की है तो तुम मुझे कमरे से कैसे निकाल सकती हो? इतने दिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिंपथी थी, थोड़ा सा प्यार था, पर अब तुम्हारे अंदर भी बदला है और मेरे अंदर भी। वो अलग बात है, दोनों का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होने वाला है, पर अब ऑफिशियली तुम मेरी बीवी हो। तुम मुझे अपने करीब आने से बिल्कुल नहीं रोक सकती हो। इतना बोलकर वो अब धीमे कदमों से त्रिशा की तरफ बढ़ गया, जिसे घबराते हुए त्रिशा ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अब तक जो समर्थ त्रिशा के साथ सॉफ्ट बिहेवियर कर रहा था, वो अपने डेविल रूप में वापस आ चुका था, क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस उस लड़की के लिए थी जिसके साथ समर्थ में बुरा कर दिया था और उसने अपनी सजा भी भुगत ली थी। लेकिन फिलहाल जो लड़की उसके सामने है, वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और उसके लिए समर्थ के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन पाना बहुत मुश्किल था। वो बेरहमी से कदम आगे बढ़ाते हुए त्रिशा और खुद के फासले को कम करता जा रहा था, और एक वक्त आया जब त्रिशा के पास पीछे खिसकने के लिए जगह नहीं बची और वो वॉल से जा लगी।